आशीष का मर्डर केस हाई प्रोफाइल केस बन गया था। ऊपर से न जाने कौन इस केस को हाइप करवाने के लिए पैसे फेंक रहा था। मीडिया में ये न्यूज़ वायरल हो गई थी कि आशीष पास की मौत जिसके हाथों हुई है, उसने अनीमिया का बहाना लगाकर जमानत लेने की कोशिश की है, तो सब हॉस्पिटल के आगे इकट्ठा हो गए थे। वो इशिका को भला बुरा कह रहे थे। तभी क्रिस्टल आगे आई। उसने इशिका के बेगुनाह होने की बात कही। उसने खुद को साबित करने के लिए अपनी वर्दी और जॉब तक दाम पर लगा दी थी। क्रिस्टल का इंटरव्यू देखने के बाद इशिका ने सिर पकड़कर कहा, ये लड़की हमेशा इमोशनल होकर डिसीजन लेती है और बाद में पछताना पड़ता है। क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े दावे करने की? इशिका बोल रही थी तभी उसके कानों में अभिमन्यु की गहरी आवाज सुनाई दी। उसने कहा, तुम्हारी दोस्त काफी जिद्दी और आरोगेंट है, पर फिर भी वो तुम्हारा भला चाहती है। इशिका ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, हाँ वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। अचानक इशिका के दिमाग में पुरानी बातें ताज़ा हो गईं, जब वो जेल में थी और मालविका उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। इशिका जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। तभी अभिमन्यु एक फरिश्ते की तरह आया। उसने किसी की भी परवाह नहीं की और एक पुलिस इंस्पेक्टर को गन पॉइंट पर ले लिया था। इशिका के लिए वो सबसे बगावत कर बैठा था। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिल्कुल किसी हीरो की तरह उसे हॉस्पिटल लेकर आया। अगर अभिमन्यु नहीं आया होता तो इशिका शायद मर जाती या फिर उसकी हालत और ख़राब हो जाती। अभिमन्यु ने भी कम रिस्क नहीं लिया था। गलती से भी इंस्पेक्टर माधव या उसके स्नाइपर उसे शूट कर देते तो शायद वो अपनी जान गंवा देता। इशिका ने महसूस किया कि अभिमन्यु ने क्रिस्टल से भी ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा डिसीजन लिया था। अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए इशिका ने खोए हुए शब्दों में कहा, थैंक यू मिस्टर राजवंश। उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु इधर उधर देखने लगा। वो शायद थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो गया था। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, अगर आपको कुछ हो जाता तो शायद दादी तो मर ही। बोलते हुए अभिमन्यु रुक गया और फिर गहरी सांस लेकर बोला, यूर वेलकम मिस सिंघानिया। वो समझ गया था कि अब दादी का बहाना देना बेवकूफ़ी होगा। बोलते हुए उसने अपनी नाक पर उंगली घुमाई। उसकी इस हरकत पर इशिका को कुछ याद आया, वो लड़का जो उसके साथ किडनैपर्स के साथ रहता था। एम्बैरस होने पर वो भी अपनी नाक पर उंगली घुमाने लगता था। फिर उसे याद आया कि उसे भी अभिमन्यु की तरह बिल्लियों से डर लगता था। इशिका ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा और अचानक से पूछा, जब आप छोटे थे क्या किसी ने आपको किडनैप कर लिया था मिस्टर राजवंश? इशिका की बात सुनकर अभिमन्यु चौंक गया था। उसने तुरंत कहा, और आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं मिस सिन्हानिया? एक पल के लिए इशिका को लगा कि अभिमन्यु ही वो लड़का था जो उसके साथ उस तहखाने में रहता था जब उसे किडनैप कर लिया गया था और उसी ने उसे बचपन में बचाया था। अचानक इशिका को एहसास हुआ कि उसने अभिमन्यु को काफी पर्सनल सवाल पूछ लिया था। अगर अभिमन्यु के साथ ऐसा कुछ हुआ भी होता तो कोई भी अपनी जिंदगी में हुई इतनी बुरी घटना को वापस याद नहीं करना चाहेगा। साथ ही वो लड़का जो उसके साथ रहता था वो गोवा से नहीं था। इशिका ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो अपनी सफाई देना चाहती थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और क्रिस्टल अंदर आई। उसे देखते ही उन दोनों के चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य हो गए थे। क्रिस्टल के चेहरे पर अभी भी अफसोस दिखाई दे रहा था कि उसने इशिका को गलत समझा था। उसके हाथ में आयरन सप्लीमेंट्स ड्रिंक थी जो वो इशिका के लिए लाई थी। उसने इशिका को ड्रिंक देते हुए कहा, मैं अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ। सब कुछ मेरी गलती से हुआ था। उम्मीद है कि तुम मेरे और इंस्पेक्टर माधव देशमुख के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं करोगी। इशिका ने कुछ भी कहने से पहले अभिमन्यु की तरफ देखा। उसने उसकी तरफ देखकर पलकें झपकाई तो इशिका ने कहा, चिंता मत करो, मैं और मिस्टर राजवंश तुम्हारे और इंस्पेक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करेंगे। इशिका इतनी जल्दी मान गई थी इसकी क्रिस्टल को उम्मीद नहीं थी। उसकी जगह कोई और होता तो उसके और इंस्पेक्टर के अगेंस्ट जरूर कंप्लेंट करता। क्रिस्टल ने इशिका को थैंक यू कहा, लेकिन इशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगर क्रिस्टल की जगह कोई और होता तो इशिका पक्का एक्शन लेती, लेकिन वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी। ऊपर से आज उन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसमें इशिका की ही गलती थी। उसके इस एहसान का बदला चुकाने के लिए क्रिस्टल ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, हम ये साबित कर देंगे कि तुमने आशीष दास को नहीं मारा है। बात करते हुए क्रिस्टल ने इशिका और अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर कोई भी सरप्राइज नहीं था कि क्रिस्टल उनके साथ क्यों दे रही है। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ तो उसने सिर हिलाकर कहा, क्या तुम दोनों जानते हो कि आशीष को किसने मारा है? इशिका को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा जो काफी शांत नजर आ रहा था। क्या अभिमन्यु भी इस बारे में जानता था? इशिका अभिमन्यु से पूछना चाहती थी, लेकिन फिर अभिमन्यु ने खुद से ही कहा, मैंने अपने एक आदमी को माहिर दास के पीछे लगा दिया है। तो क्या आशीष को उसके बेटे माहिर ने मारा है? आपको कैसे पता चला मिस्टर राजवंश? क्रिस्टल ने हैरानी से पूछा। इशिका ने तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अभिमन्यु ने उसे सब समझाते हुए कहा, उस दिन क्राइम सीन पर चार लोग मौजूद थे। हम चारों वहीं पर थे जब आशीष की मौत हुई थी। जब तुम अंदर गई थी तब हम चारों ही बाहर थे और अंदर से आवाज आई। वो तभी आ सकती है जब बातें पहले से रिकॉर्ड की हुई हों। हमारे आने के थोड़े टाइम पहले ही आशीष की मौत हुई थी। टाइम गैप इतना कम था कि पोस्टमार्टम में कुछ भी क्लियर नहीं आया। अभिमन्यु के समझाने के बावजूद उसकी बातों से क्रिस्टल सहमत नहीं हुई। उसने तुरंत कहा, लेकिन हमें क्राइम सीन पर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं मिला। हमने आशीष का मोबाइल भी चेक किया था, उसमें किसी तरह का कोई वॉइस नोट पहले से रिकॉर्ड नहीं किया गया था। यहाँ तक कि उसके मोबाइल पर किसी और के फिंगरप्रिंट तक नहीं मिले थे। इस बार अभिमन्यु के बजाय इशिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आशीष के मोबाइल में नहीं बल्कि माहिर के फोन में थी। जब वो अंदर आया तब उसने जानबूझकर अपना सारा सामान फैला दिया था। उसका मोबाइल पहले से नीचे गिरा हुआ था, जो उसने सामान उठाने के चक्कर में जल्दी से उठाया और पुलिस को कॉल किया। उस वक्त इशिका को यह सब अजीब नहीं लगता, क्योंकि सामान गिरने के साथ मोबाइल गिरना भी आम बात थी। उसे यही लगा कि पैसों के साथ माहिर का मोबाइल गिर गया है, तभी वो उठा रहा है, जबकि वो मोबाइल वहां पहले से ही मौजूद था। पुलिस को भले ही समझ न आए, लेकिन अभिमन्यु और इशिका ने सब कुछ समझ लिया था। इशिका के बाद में अभिमन्यु ने कहा, माहिर आशीष का बेटा है, इस वजह से वो उस पर भरोसा करता है और उसने उसे वो रिकॉर्डिंग करने के लिए मना लिया होगा। उसे नहीं पता था कि वो उसकी जान ले लेगा। जब मिस सिन्हानिया कमरे के अंदर गई तब आशीष उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो मरने के बाद अपना कंट्रोल खोकर नीचे गिर रहा था। इशिका के पीछे हटने की वजह से वो रॉन्ग डायरेक्शन में गिरा और सारा इल्जाम उसके ऊपर आ गया। अगर अभिमन्यु और पृथ्वी का दिमाग इतना तेज नहीं होता और इशिका वहां दिमाग से काम नहीं लेती, तो सबको यही लगता कि इशिका ने ही आशीष को मारा है। सब कुछ जानने के बाद क्रिस्टल को उनके दिमाग पर काफी हैरानी हो रही थी और साथ ही गर्व भी। उसने सख्ती से कहा, अगर माहिर ने आशीष को मारा है तो हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। अगर उसने अपने फोन से रिकॉर्डिंग डिलीट भी करती है तब भी कोई बात नहीं, हम डेटा कलेक्ट करके उसे गुनहगार साबित कर सकते हैं। अचानक इशिका ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, अभी तुम कुछ नहीं करोगी। इशिका का ये बर्ताव क्रिस्टल को काफी अजीब लगा। उसने कहा, लेकिन अभी क्यों नहीं? सबूत सामने आते ही तुम्हारा नाम साफ हो जाएगा। बाहर लोग तुम्हारी बदनामी कर रहे हैं, क्या तुम्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा?
क्रिस्टल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अभिमन्यु कुछ कुछ समझ रहा था। उसने शांति से कहा, मुझे लगता है मिस सिंघानिया इस वक्त कुछ और ही प्लान कर रही है, तो हमें शांत रहना चाहिए। इशिका ने अभिमन्यु की बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर क्रिस्टल से बोली, क्रिस्टल, फिलहाल कुछ मत करो, लोगों को जैसे सोचना है सोचने दो। मुझे फिर से सच जानने का मौका नहीं मिलेगा। आशीष मरने से पहले मुझे कोई राज बताना चाहता था, जरूर इसके बारे में माहिर जानता है। आयशा आशीष को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देती थी, तो मैं मान ही नहीं सकती कि आशीष के मर्डर में आयशा का कोई हाथ नहीं है। पक्का उसने ही पूरी साजिश की होगी। तो तुम माहिर का इस्तेमाल करके आयशा का सच सामने लाना चाहती हो? क्रिस्टल ने झट से पूछा। अचानक क्रिस्टल को सब समझ आ गया। उसे याद आया कि वो तो जमानत पर साइन करने वाली थी, लेकिन बीच में आयशा के भड़काने की वजह से वो कन्फ्यूज हो गई थी। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही हैं। मैं तुम्हारी जमानत के लिए तैयार थी, लेकिन आयशा मेरे पास आई और मुझे अपनी मीठी बातों में बहलाने की कोशिश की। उस लड़की को मैं अच्छे से समझ गई हूँ। वो कुछ भी खुद से नहीं करती है, मीठी मीठी बातों में दूसरे लोगों का ब्रेन वॉश करती है ताकि खुद को इन सबसे पीछे रख सके। उसने आकर बताया कि पेरेंट्स में तुम एनीमिक फील करती हो। हम उसको डायरेक्टली कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो अपने पीछे कोई सुराग छोड़ती नहीं है। वो तो बस लोगों को उल्टी सीधी बातें बताती है, जिससे वो खुद कन्फ्यूज होकर गलत फैसला ले बैठते हैं। बहुत जल्द ही क्रिस्टल ने आयशा के दिमाग को समझ लिया था। हाँ, वो यही करती थी। कभी सामने वाले को क्लियरली नहीं बताती थी कि उसे क्या करना है, और उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर उल्टी सीधी हरकतें करवाती थी। हाँ, आयशा की गलती है, और आशीष के मरने का फायदा भी सबसे ज्यादा उसी का है, लेकिन मैं इस वक्त कुछ और ही प्लान कर रही हूँ, इशिका ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? क्रिस्टल ने सीधे सीधे पूछा। इशिका उसे समझाना चाहती थी, लेकिन ज्यादा बोलने की वजह से उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। इशिका को खांसी आने लगी। तभी अभिमन्यु ने उसे पानी का ग्लास देते हुए कहा, आप आराम कीजिए, मैं इसे सब समझा दूंगा। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। अभिमन्यु ने क्रिस्टल की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है मिस सिंघानिया आयशा के राज के बारे में पता लगाना चाहती हैं। बोलते हुए अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु उसका प्लान समझ गया था। अभिमन्यु ने आगे कहा, आशीष के पास आयशा का कोई ऐसा राज था जिसके बदले में वो उसे पैसे देने के लिए मजबूर थी। अब वो अपने बेटे पर यकीन करता है, तो अपने बेटे को वो राज जरूर बताया होगा। मुझे लगता है आयशा बाकी लोगों की तरह माहिर को भी मैनिपुलेट कर रही है। अगर हम उसे अरेस्ट भी कर लेंगे तो वो आयशा का नाम नहीं लेगा। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर वो एक बड़ी गलती करके बच जाएगी। इशिका को हैरानी हुई कि उसके बिना बताए ही अभिमन्यु उसका प्लान आसानी से समझ गया था। हाँ, वो यही चाहती थी। इस बार वो आयशा को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि बिना सबूत के अगर इशिका ने कुछ कहा तो हर बार की तरह सिंघानिया फैमिली उसी पर इल्जाम लगाएगी। इस बार इशिका पूरी प्लानिंग के साथ आयशा को सामने लाना चाहती थी। फिलहाल के लिए इतना ही। अब इशिका ने सारा मामला अपने हाथ में लिया है, तो आयशा इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाएगी।